आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है नियति और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की जो हमारी इंग्लिश किताब है ना। और पिछले हमारे लेसन में हमने पढ़ा था ऑन किलिंग अ ट्री की, हमने पूरी समरी मतलब पूरा उसका मीनिंग वगैरह जान लिया था। तो आज के इस लेसन में हम क्या करेंगे, हम उसके जो पोयम के नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्विक रिकैप करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा था, मतलब कि मैं पूरी पोयम आपको समराइज करती हूँ। ओके, सो बेसिकली ऑन किलिंग अ ट्री जो पोयम है हमारी, उसकी सेंट्रल आइडिया क्या थी, यानी कि उसका जो केंद्रीय विचार था कविता का वो क्या था, वो हम जानेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर पोयम देयर इज अ ब्यूटिफुल आयरनिक स्टेटमेंट रिटन बाय द पोएट अबाउट किलिंग अ ट्री, एक्चुअली ही मीन्स इट ऑपोजिट। So basically he taunts on how trees are being killed by, but they must not kill. मतलब कि हमारे पोएट जो है वो बता रहे हैं, मतलब उन्होंने व्यंगात्मक भाव से ये प्रस्तुत की है पोयम। वो बताते हैं कि किस तरह से मतलब जो ट्रीज है वो कट किए जाते हैं, और फिर कैसे ट्री, एक जो पर्टिकुलर प्लांट है या फिर एक पौधा है वो कैसे अपनी मौत मरता है, ये पूरी की पूरी चीज हमको यहाँ पे पोएट ने एक्सप्लेन की है। बट उन्होंने क्या किया है, बहुत ही एक ह्यूमरस तरीके से उन्होंने इस पोयम को जो है वो प्रेजेंट किया है। ओके, सो एक्चुअली ही मीन्स ऑपोजिट, मतलब जो भी बातें वो बता रहे हैं वो उनका वही पर्टिकुलर मतलब नहीं है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है जब हम एक पर्टिकुलर पौधे को मार डालते हैं। ओके, पर वो वैसा हमने नहीं करना चाहिए। Fine. So he further says that the tree is hard to kill with a knife. यानी कि मैंने आपको पिछली भी कक्षा में कहा था, पिछली हमारी क्लास में, कि एक सादे छुरे से किसी भी प्लांट को मतलब प्रॉपरली खत्म करना ये पॉसिबल नहीं है। सो द ट्री टेक्स ईयर टू ग्रो फ्रॉम द अर्थ। ही सेज दैट टू किल अ ट्री इट्स रूट्स मस्ट बी पुल्ड आउट एंटायरली फ्रॉम द सॉइल। द पोएम ऑल्सो कन्वेज अ मैसेज दैट द ट्रीज आर अ लाइफ लाइन। मतलब कि पोएट हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं यानी कि पौधे होते हैं वो हमारी लाइफलाइन होते हैं। और क्यों होते हैं ये तो आपको पता ही है, आपने अपनी साइंस क्लास में पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो है या फिर पौधे हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन या फिर वो ग्रीन हाउस गैस जो है उसका इफेक्ट कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। और तो और जहां पे बहुत ज्यादा पौधे होते हैं वहां अच्छी से बारिश आती है। तो इतनी सारी चीजें एक प्लांट एक पौधा हमारे लिए करता है, बट हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही एकदम बेतुखा सा बिहेव करते हैं। हम लोग जो है प्लांट्स को अपने फायदे के लिए हम मार डालते हैं, है ना। हमको क्या करना होता है, हमको बड़े बड़े रोड्स बनाने होते हैं, हमको बिल्डिंग्स बनानी होती है, हमको शॉपिंग मॉल्स बनाने होते हैं। तो इसलिए हम अपने फ्यूचर का विचार ना करते हुए, हमारे भविष्य का विचार ना करते हुए, हम लोग वो प्लांट्स जो है वो कट करे जाते हैं और अपनी जो सोसाइटी है वो एस्टैब्लिश करे जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, यही पोएम का जो है वो सारांश है ना। तो पोएट हमें कहते हैं कि अगर हमें एक पौधे को कम्प्लीटली मारना चाहिए, किल करना चाहिए, तो हमें एक नाइफ की मदद से वो हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम नाइफ यूज करेंगे तब वो पौधा फिर से उसी मतलब जो ब्रांच कट करी है हमने या फिर जो पार्ट जो हमने कट करा है वहां से वो पौधा एक नया जन्म लेगा, है ना। तो आगे जाके पोएम पोएट का सारांश ये भी है बच्चों, सेंट्रल आइडिया पोएम की ये भी है कि अगर हमारे लाइफ में जब भी ऐसे सिचुएशंस आते हैं, जब हमारा लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो किसी वजह से बिखर जाता है, तब हमने एक पौधे की तरह ही खुद को रीबिल्ड करना है, खुद के जो सारे इश्यूज जो है वो सॉर्ट करके, परेशानियां हल करके हमने एक नया जन्म लेना चाहिए, बिल्कुल एक पौधे की तरह। ओके, ही गिव्स आउट द मैसेज दैट ट्रीज आर समथिंग पायस एंड लाइक दे आर ऑल्सो लाइक ह्यूमन बींग। यहाँ पे एक नया वर्ड है बच्चों, पायस, PIOUS, पायस की मतलब की प्योर यानी कि शुद्ध, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही उनका लाइफ शुद्ध होता है, बिल्कुल एक आधे मतलब एक इनसेंट जैसा किड होता है, एक बच्चा होता है उसी की तरह। और क्यों ऐसा कहा गया है पायस होता है, क्योंकि जो ट्रीज होती है प्लांट्स वो हमेशा दूसरों की यानी कि इंसानों की मदद करने में जुटे रहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊं, आप इमेजिन करो एक फलों से भरा हुआ एक पेड़, चलिए अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं आम का, जो जब भी एक आम के पौधे पे एक बहुत ज्यादा अगर आम लगे होते हैं तो वो पौधा क्या करता है, वो और ज्यादा हाइट पे नहीं जाता बल्कि उसके वजन से वो झुक जाता है, एंड द प्लांट मेक श्योर कि जो भी उसके नीचे से जा रहा हो उसको छांव मिले और उसको खाने के लिए भी आम मिले, है ना। तो इसी प्रकार से हम ह्यूमन बींग्स को भी इसी तरह होना चाहिए, और हमने जो हमारे जब भी हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है या फिर बहुत ज्यादा वेल्थ आ जाती है, झुक जाना चाहिए, मतलब कि हमने बहुत काइंड और बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेना है, ना कि हमने अपना एटीट्यूड शो करके लोगों को बहुत ही ज्यादा मिसट्रीट करना चाहिए। यही इस पोयम की एक और एक मैसेज जो है वो पोयम का ये है। सो ही कन्वेज दैट ट्रीज आर वेरी डीप रूटेड एंड दे कैन नॉट बी वाइप्ड आउट इजीली। मतलब कि हमें पोएट कहते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं, पौधे, वो बहुत ज्यादा मिट्टी के साथ उनका बहुत गहरा नाता होता है, इसी वजह से उनको एकदम से खत्म करना पॉसिबल नहीं होता। ही इंडिकेट्स एंड कंपेयर्स इट विथ ईविल विच इज ऑल्सो डीप रूटेड इन द सराउंडिंग्स एंड कैन नॉट बी अपरूटेड सो इजिली विदाउट चेंजिंग द एनवायरमेंट। मतलब कि हमें पोएट ये भी कहते हैं कि प्लांट्स जो होते, मतलब हमारे आस पड़ोस में जो अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती हैं वो बहुत ही डीप रूटेड होती हैं, और अगर हमको उनको खत्म करना है तो उनकी जड़ पे वार हमें करना है। मतलब आप सोचो कि बुराई होती है हमारे यहाँ पे, हमारे आस पड़ोस में, तो अगर वो हमको खत्म करनी है तो हमको क्या करना है, हमें उसकी जड़ तक जाके वो चीज खत्म करनी है। तो चलिए, ये तो था एकदम सेंट्रल आइडिया, यानी कि कविता का केंद्रीय विचार। अब देखते हैं कविता की थीम क्या है। सो बेसिकली द पोएट कंसिडर्स द ट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पोएट कहते हैं कि ये जो हमारी जो ट्री है वो, यानी कि वृक्ष जो है वो जीवित रूप में पोएट हमें उसको समझते हैं उसको। एंड अकॉर्डिंग टू पोएट इट हैज द राइट टू लिव एनी लाइक एनी अदर क्रीचर। यानी कि और भी, मतलब जैसे कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर इंसान या फिर बाकी पशुओं की तरह भी उस पर्टिकुलर पौधे को भी जीने का उतना ही हक है। बट मैन इज किलिंग इट विथ अटमोस्ट क्रुएलिटी। पर जो इंसान जो है वो क्या करता है, पेड़ों को खत्म किए जाता है, परंतु उसका आशय उन्हें, मतलब बट पोएट का जो आशय है वो ये है कि उनको ये कहना है कि ट्रीज को हमें बचाना चाहिए, है ना। दिस पोयम इनडायरेक्टली गिव्स आउट अ स्ट्रॉन्ग आइडिया दैट ट्रीज आर आर लाइफ लाइन। मतलब कि ये जो कविता है वो हमें ये कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो हमारी लाइफ लाइन है, और पेड़ों को पृथ्वी से विकसित करने के लिए सालों लग जाते हैं एक पेड़ को, है ना। सो दे मस्ट नॉट बी किल्ड। द पोएट इंस्ट्रक्ट्स ऑन हाउ अ ट्री बींग किल्ड। मतलब कि पोएट कहते हैं कि कैसे प्लांट को जो है वो एकदम से उसकी हत्या करी जाती है, हम लोग करते हैं, बट हालांकि ऐसी हत्या नहीं करनी चाहिए। तो कवि का ये संदेश है कि पेड़ों के कुछ पवित्र गुण हैं जो कि मनुष्य की तरह ही है, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी कहा था, है ना। तो और वो कहते हैं कि अगर वो पेड़ को इस तरह से इंसान अगर मारते हैं तो, मतलब चाकू से वगैरह अगर जब हम मारते हैं तो पेड़ को नुकसान नहीं होता, अंत में वो पेड़ जो है वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बिल्ड करता है ना, और ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाता है। और अंत में कवि जानकारी ये देते हैं कि अगर पेड़ की हत्या करनी है तो उसे पूरी तरह से उखाड़ा जाना चाहिए, ना कि बस चाकू से उसे थोड़े बहुत, मतलब उसको घाव देने चाहिए, है ना। तो अंत में कवि का संदेश है कि पेड़ बहुत ही कीमती है और इसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि पेड़ों के जड़ें जो हैं वो बहुत ज्यादा गहरी होती है और इनको आसानी से उखाड़ा नहीं जा सकता। वो इसकी तुलना बुराई से भी करते हैं कि मतलब जो बुराई होती है वो भी ऐसे ही जड़ तक, मतलब जा पहुंची होती है, और अगर उसको हमें उखाड़ना है तो बहुत ज्यादा उसके जड़ों पे हमें वार करना चाहिए। तो ये थी बच्चों इस पोयम की समरी। अब चलते हैं, कुछ आसान से सवाल दिए गए हैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी लाए हैं और एक दो हम वैल्यू बेस्ड सवाल भी आंसर करेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कैन अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल अ ट्री। सवाल ये है कि क्या हम एक पर्टिकुलर चाकू से किसी भी प्लांट को मार सकते हैं क्या, और क्यों नहीं मार सकते। कि इसका जवाब ये है कि बहुत अगर छोटा प्लांट हो, छोटा सा पौधा हो, तो हाँ जी हम उसको मार सकते हैं, बट अगर हम बात बड़े पेड़ की करें कि नहीं, तो नहीं, हम इस तरह से पेड़ों, बड़े पेड़ों को हम मार नहीं गिरा सकते। और क्यों नहीं गिरा सकते, तो इट्स अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स एंड दे डू नॉट हैव द अबिलिटी टू किल द ट्री। इट हैज टू गो थ्रू वेरियस प्रोसेसेस। इफ और तो और हमें जो उसके रूट्स जो हैं वो जो अर्थ में बहुत ज्यादा गहरे गए हैं उनको हमें निकाल फेंकना चाहिए, तब भी हम एक प्लांट को मार डाल सकते हैं, है ना। तो आते क्वेश्चन नंबर टू पे, हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज, लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। मतलब कि हमें क्वेश्चन ये पूछता है कि प्लांट जो है वो किस तरह से अपनी पूरी पूरा आकार उसने ले लिया है, और कुछ वर्ड्स लिस्ट डाउन करने को कहता है सवाल हमें कि ये प्रोसेस मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। तो कविता में कौन कौन से वर्ड्स है वो वर्ड्स हमको लिखने चाहिए। ओके, सो बेसिकली अ ट्री कंज्यूम्स द अर्थ एंड राइजेस आउट इट इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, ये लाइन्स है। और एक लाइन है, इट अब्सॉर्ब्स द ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर। यानी कि एक लाइन है ट्री कंज्यूम्स, मतलब ट्री जो है वो पर्टिकुलर मतलब मिट्टी पे पलता है, पलती है, मतलब एक पौधा। और इट अब्सॉर्ब्स ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर, यानी कि वो सालों तक जब हवा ले लेता है, सनलाइट यानी कि सूरज की धूप लेता है और पानी लेता है, तब वो ट्री पर बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये कुछ लाइन्स हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, वॉट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, वॉट मेक्स इट ब्लीड। यानी कि जो वर्ड है ब्लीडिंग बार्क, यानी कि हमारे पोएम में जो लिखा है उसका मतलब पूछ रहा है ये सवाल, और पूछ रहा है, और भी पूछ रहा है कि वॉट मेक्स इट ब्लीड, यानी कि किस वजह से जो ट्री का जो बार्क है वो ब्लीड हो रहा है। तो पर इसका जवाब है ये है, ब्लीडिंग बार्क मीन्स द ट्विग्स विच आर कट मर्सीलेसली एंड दे लीव अ लिक्विड सब्सटेंस, इफ एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कट इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग इन द सेम वे द लिक्विड सब्सटेंस कम आउट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री एंड द ह्यूमन बींग्स बेसिकली एक प्लांट को कट करते हैं, और जब भी अपनी एग्स यानी कि जो कुल्हाड़ी होती है वो चला के प्लांट पे, या फिर आप मान के चलिए छुरा छुरी चला के प्लांट को कट करते हैं, और जब वो सब्सटेंस फ्लो हो जाता है प्लांट से, उसको पोएट कह रहे कि वो ब्लीडिंग बार्क है, यानी कि जो खाल है प्लांट की वो ब्लीड कर रही है। इट्स अ सिमिलर वे, मतलब ये कंपेयर किया जा रहा है कि जब भी हम इंसानों का कोई शरीर का कोई भाग कट हो जाता है, कि मान के चलिए जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं किचन में, आपकी आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी, और जब उनको छुरा या फिर कुछ ऐसा लग जाता है, या फिर आप मान के चलिए एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई पार्ट बॉडी पार्ट हमारा हर्ट हो जाता है, तब जब जैसे हम इंसान को खून की ब्लीडिंग होती है, उसी प्रकार से प्लांट या फिर पौधा जो है वो उसी प्रकार से ब्लीड करता है। मतलब इन अ वे पोएट ने कहा है कि जो ब्लीडिंग बार्क जो है वो और कुछ नहीं पर वो प्लांट का जो प्लांट का खून है या फिर प्लांट का ब्लड है। ओके, आते क्वेश्चन नंबर फोर पे, द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा, व्हाट डज ही मीन बाय इट। आप अगर थर्ड स्टेंजा पे पोएम के जाएं तो वहां पे नो ऐसा वर्ड पहले लिखा, तो सवाल ये पूछ रहा है कि नो का वहां पे मतलब क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो सो द नो इज यूज टू एम्फसाइज द पर्सपेक्टिव दैट चॉपिंग और हैकिंग विल नॉट बी सफिशियंट फॉर किलिंग अ ट्री। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे एक नया वर्ड मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, EMPHASIZE। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, EMPHASIZE, एम्फसाइज यानी कि किसी भी चीज पे जोर देना। एक और डिफरेंट वर्ड है परस्पेक्टिव, मैं आपको स्पेलिंग बता रही हूँ, PERSPECTIVE। फिर से रिपीट करती हूँ मैं, PERSPECTIVE, परस्पेक्टिव। इसका मतलब है किसी भी चीज के लिए अपना नजरिया देना, है ना। तो पूरा आंसर हम फिर से रिपीट करते हैं, नो इज यूज टू एम्फसाइज द परस्पेक्टिव दैट चॉपिंग और हैकिंग विल नॉट बी सफिशियंट फॉर किलिंग अ ट्री। यानी कि नो इस वर्ड पे ज्यादा से ज्यादा फोकस इसलिए किया है, ये नजरिया देने के लिए या फिर ये ज्यादा जताने के लिए कि चॉपिंग और हैकिंग मतलब कि कट करना प्लांट को छुरी से, वो सफिशिएंट नहीं होगा उस प्लांट को मार डालने के लिए या फिर उस पौधे को मार डालने के लिए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव, यानी कि एंकरिंग अर्थ और अर्थ केव, ये जो दो वर्ड्स दिए गए हैं पोएम में उसका मतलब क्या है। तो इसका जवाब है बच्चों, इट मीन्स दैट अर्थ प्रोटेक्ट्स इट लाइक अ मदर, अर्थ केव इम्प्लाइज अ होल इनसाइड इट, एंड द ट्री अलाउज इट्स रूट टू स्प्रेड अंडरनीथ द अर्थ प्रोटेक्ट्स इट एंड फॉस्टर्स इट इट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू द ट्री. यहाँ पे बच्चों एक डिफरेंट वर्ड मैंने यूज किया है, वो है फॉस्टर. स्पेलिंग बताती हूँ मैं आपको, FOSTER, फॉस्टर. FOSTER, फॉस्टर, इसका मतलब है पाल पोस के बड़ा करना है, फिर पालना बेसिकली. ओके, सो यहाँ पे मतलब है कि जो अर्थ है यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक माँ की तरह एक पेड़ को एक पौधे को अपने आप में समा लेती है. और अर्थ केव का मतलब है जो पूरी मिट्टी जो होती है उसके अंदर होल जैसे डिग हो जाता है, यानी कि बहुत बड़ा से HOLE होल है ना जो क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ दी प्लांट के जो रूट्स होते हैं उस वजह से. और जो प्लांट है वो अलाउ करता है अपने रूट्स को अंडरनीथ जाने के लिए उस मतलब मिट्टी में. और अर्थ जो है हमारी पृथ्वी वो उस प्लांट को अच्छे तरह से पालती है. मतलब इसका मतलब ये है कि मिट्टी से उस पौधे को नेसेसरी जो मिनरल्स होते हैं, आयन वगैरह जो भी होता है, जो भी नाइट्रोजन चाहिए होता है एक पौधे को एक पेड़ बनने के लिए, वो अर्थ प्रोवाइड करता है, यानी कि मिट्टी प्रोवाइड करती है अर्थ पे जो होती है वो. सो इट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू द ट्री. एक छोटे से पौधे को एक बड़ा पेड़ बनने के लिए अर्थ जो है वो मदद करती है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, यानी कि इसका मतलब पूछा गया है. व्हाट डज ही, ये जो वर्ड है द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड का मतलब, सो बेसिकली द स्टेम और द रूट जो होता है एक पेड़ का, मतलब यानी कि खाल एक पेड़ की, वो पेड़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है ना. और व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट इट्स स्ट्रेंथ इज एक्सपोज्ड, यानी कि जब हम प्लांट को किसी भी पौधे को जड़ से हम उखाड़ने की कोशिश करते हैं तब उसकी स्ट्रेंथ यानी कि उसका जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो हम लोग एक्सपोज कर देते हैं. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. व्हाट फाइनली किल्स द ट्री, यानी कि एक प्लांट को मार डालने के लिए कौन सा, मतलब कौन सा हथियार या फिर कौन सी ट्रिक हम यूज कर सकते हैं. ये बहुत ही व्यंगात्मक सवाल है बच्चों, मतलब कि पोएट हमें इस सवाल से मतलब ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मौत बहुत ज्यादा भयानक होती है, भले वो इंसान की हो या फिर एक पौधे की हो. पोएट हमें ये भी बताते हैं कि जो डेथ होती है वो इंसानों को भी उतना ही तकलीफ देती है या फिर हर्ट करना जितना कि एक लिविंग क्रीचर को करती है. बेसिकली पोएट हमें ये कह रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं उनमें भी जान होती है. ओके, सो बेसिकली पुलिंग आउट द ट्री फ्रॉम द, यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रही हूँ. पुलिंग आउट द ट्री फ्रॉम द मदर अर्थ एंड स्क्रॉचिंग एंड चोकिंग इट इन द सन एंड एयर किल द ट्री. इट बिकम्स ब्राउन ड्राई एंड गेट्स हार्ड, इवेंचुअली इट डाइज. मतलब कि यहाँ पे पोएट हमें बता रहे हैं कि जब भी हम एक प्लांट को एक मिट्टी से मतलब हम उखाड़ देते हैं, और क्या होता है इसमें जब हम उसको उखाड़ देते हैं तो एयर जो होती है आसपास की या फिर जो धूप होती है वो उसको चोक करती है, यानी कि उसको सांस लेने में उस पेड़ को डिफिकल्टी आती है. तो ऐसा क्यों कहा गया है बच्चों, आपको पता होगा आपके साइंस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट होता है वो सांस लेता है अपने लीव से या फिर अपने जो पौधे के जो पत्ते होते हैं उससे सांस लेता है ना. और एक पर्टिकुलर पौधा क्या करता है, जब उसको जीवित रहना होता है तो वो मिट्टी से जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है वो भी ले लेता है. पर जब हम उसके रूट्स ही एक्सपोज करते हैं सन को या फिर एयर को तो वो पौधा सफोकेट हो जाता है. बस एक ही चीज काफी नहीं होती. अगर आप देखो कि एक छोटे पौधे को अगर आप सॉइल में लगा दो तो क्या होगा, और अगर आप उसको पानी ना दो, बस उसको मिट्टी ही मिलती है और बस धूप और मिट्टी इस दोनों के सहारे वो जिंदा नहीं रह सकता. एक पौधे को पानी की भी जरूरत होती है. और सिमिलरली बस सनलाइट और एयर उसको काफी नहीं होती. ये तीनों चीजें हैं वो एसेंशियल, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी कौन कौन सी चीजें एसेंशियल होती है जिंदा रहने के लिए, है ना. तो बेसिकली जब हम एक पौधे को सूरज और एयर के पास जब एक्सपोज करते हैं वो, तब वो पौधा चोक हो जाता है, मतलब वो सांस नहीं ले पाता, वो जिंदा नहीं रह पाता. तो इसी वजह से, इसी तरह से हम एक पौधे को मार डाल सकते हैं. ये बताने का यहाँ पे पोएट का मतलब है या फिर सारांश आप कह सकते हैं। ओके तो बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाले हैं आपको, जो एग्जाम में आपको और ज्यादा मदद करेंगे। ओके, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स भी निकाले हैं, तो हम वो क्विकली देख लेते हैं। इट विल हेल्प यू इन योर आंसरिंग योर एग्जाम्स। ओके, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो मैंने स्पेशली लिखे हैं आपके लिए। हाउ डज अ ट्री बिकम स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ही सिंपल है सवाल, कि एक प्लांट जो होता है, एक पौधा, वो बहुत अपना से स्ट्रांगनेस वो कैसे अटेन कर लेता है, यानी कि वो स्ट्रांग कैसे बन जाता है। तो इसका सवाल बच्चों बहुत ही इजी है। सो बेसिकली अ ट्री ग्रोज एंड एक्सपांड्स ग्रेजुअली। एक प्लांट जो है, पौधा, वो बहुत ही स्लोली बड़ा होता है। सो बेसिकली देर आर वेरियस प्रोसेसेस ऑफ नेचर, इंक्लूडिंग अर्थ विच हेल्प्स इट इन इट्स ग्रोथ। अ ट्री ग्रोज ऑन अर्थ, फीड्स ऑन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्ब्स ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वॉटर, एंड ऑल दीज थिंग्स मेक देम स्ट्रॉन्ग। यानी कि मतलब ये है कि एक पौधा जो है वो बड़ा होने में, मतलब एक पर्टिकुलर बहुत ज्यादा पेड़ बनने के लिए बहुत ज्यादा उसको साल लग जाते हैं, और तो और धूप भी लगती है उसको, सूरज की रोशनी भी लगती है और हवा भी लगती है एक बड़ा प्लांट बनने के लिए, और उसको सॉइल भी लगती है, मतलब अर्थ के क्रस्ट पे जो नेसेसरी, जो उसको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी मिलते हैं, तब जाके एक प्लांट बहुत, एक छोटा पौधा बहुत बड़ी, आप कह सकते हो ट्री, या फिर एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। ओके तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ डज द सन एंड द एयर कॉन्ट्रीब्यूट इन किलिंग ऑफ अ ट्री। सवाल ये है कि सूरज की रोशनी और हवा एक अच्छे भले प्लांट को मार डालने में क्या भूमिका निभाते हैं। तो बेसिकली द सन एंड द एयर हार्डन एंड विदर द एक्सपोज्ड रूट्स एंड द ट्री एंड किल इट। द सन एंड द एयर आर द टू एसेंशियल एलिमेंट्स दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अ ट्री। लेफ्ट टू देमसेल्व्स दे विल नेवर किल अ ट्री, बट इफ द रूट्स आर एक्सपोज्ड एंड केप्ट इन द सन एंड एयर, द ट्री विल विदर एंड ड्राई एंड देन डाई। यानी कि मतलब ये है कि अगर जो भी एक पौधा होता है, अगर उसके रूट्स यानी कि उसकी जड़ें अगर मिट्टी में हो, और अगर वो सन और एयर के लिए एक्सपोज हो, तो वो प्लांट नहीं मरता, इनफैक्ट वो प्लांट बड़ा हो जाता है। पर अगर हम उसके रूट्स एक्सपोज करें, ओपन एयर में हम उसके रूट्स रखें, तो क्या होता है, वही सफोकेशन प्लांट को महसूस होता है। कि जैसे आपको, अगर आप अपनी नाक, या फिर नाक और मुंह आप जब दोनों बंद करते हो और आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाता जाती है, उसी तरह से एक पौधे को भी वही तकलीफ उठानी पड़ती है अगर उसके रूट्स हवा में, सूरज की रोशनी में एक्सपोज किए जाते हैं। तो और क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं सन और एयर? सन और एयर एक पौधे को उसका जो स्ट्रेंथ, उसकी जो है यानी कि उसकी खाल जो है वो सुखाती है, रूट्स भी सुखाते हैं, ताकि वो पानी या फिर और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ना ले सके, और इसी प्रकार से एक पौधा सूख के मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं बच्चों। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू व्हाइल किलिंग अ ट्री। ये बहुत ही सेंसिटिव सवाल है मेरे हिसाब से, मतलब एक बहुत ही ओपोजिट वे से सवाल मैंने ये फ्रेम किया है। हालांकि प्लांट को नहीं मारना चाहिए, फिर भी ऐसे एक, मतलब आप कह सकते हो सार्केस्टिक, यानी कि एक कटु तरीके से ये सवाल पूछा गया है कि एक पौधे को मार डालने के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है। सो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू वाइल किलिंग अ ट्री इज टू एंश्योर दैट द रूट्स आर पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ। अ ट्री इज नॉट किल्ड ऑल ऑफ अ सडन, सो लॉन्ग द रूट्स आर इंटैक्ट इनसाइड द अर्थ द ट्री रिमेन्स अलाइव। यानी कि कटुता भरे शब्दों से ये सवाल है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है एक प्लांट को मार डालने के लिए। इट इज एज इंपॉर्टेंट कि आप पूछो कि एक इंसान को मार डालने में आप क्या 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 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं आपको, है ना। तो ये जितना सुनने में मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसी तरह से हमें ये भी चीजें एक पौधे के बारे में भी सोचने के लिए आपको, मैं कहूंगी, बुरा लगना चाहिए, बिकॉज प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए लाइफ लाइन होती है। आप सोचो कि अगर सारे दुनिया के सारे पेड़ पौधे अगर नष्ट हो जाए, तो हम लोग कितना ज्यादा सफर करेंगे। अब हम ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं, कि जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मेरे बचपन में बहुत ज्यादा बारिश होती थी और इतनी ज्यादा गर्मी मैंने कभी महसूस नहीं की थी, पर एज एन वेन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, उसी प्रकार से हम लोग ये यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो बारिश जो है उसकी जो रेट है वो बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, और गर्मियों में गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, और अगर जब बारिश होती है तब बारिश तो हमारे बचपन में इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, पर अब जो बारिश की रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभी बाढ़ आके बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब जान माल की भी हानि हो जाती है। और गर्मी तो इतनी गर्मी होती है कि टेम्परेचर कभी कभी हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी ज्यादा बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा सराउंडिंग टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तब हमें डिहाइड्रेशन होने लगता है, यानी कि हमारे जो बॉडी में पानी का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और हम लोग देख सकते हैं, आप न्यूज में भी पढ़ रहे होंगे कि डिहाइड्रेशन की वजह से हम इंसानों के छोटे बच्चे भी मर जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर उनको अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों ये आप हमें सोचने की जरूरत है, आप दिस इज द राइट टाइम कि ऐसी चीजें क्यों हो जाती हैं। तो इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि हम इंसान बस अपने बारे में सोचते हैं, हमको लगता है कि नहीं हम हमारा डेवलपमेंट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बट हम अपना डेवलपमेंट तब कर पाएंगे ना जब हम जिंदा रहेंगे। तो आपके लिए मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अभी आप छोटे बच्चे हो, आप बड़े होके इस देश के, इस सोसाइटी के, इस समाज के, या फिर मैं कहूंगी इस पूरे वर्ल्ड के, आप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट घटक बन जाओगे, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन जाओगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बच्चों कि हमारे अर्थ को हम किस प्रकार से जिंदा रख सके, और जिंदा रखने का एक ही इसका पर्याप्त उपाय है और वो है पेड़ लगाना। आप ये सोचो कि आप जब सब पेड़ जब खत्म हो जाएंगे हम सांस कैसे लेंगे, अगर हम सांस लेने के लिए ही अगर हमें जो प्राण वायु जो है ऑक्सीजन वो अवेलेबल नहीं है, तो इस डेवलपमेंट का क्या कुछ मतलब कोई यूज है, वो यूज करने के लिए तो हम रहेंगे ही नहीं, है ना। तो मैं आपको ये सुझाव करूंगी मेरी ओर से कि आप जब भी कोई भी इंसान को आप प्लांट कट करते हुए आप देखोगे तब आप तो उसको रोक नहीं सकोगे, है ना, वो तो आपको मतलब पागल ही कहेगा। तो आप क्या करेंगे, आपके यहाँ पे अवेलेबल जो एरिया है वहां आप कम से कम एक पौधा लगाने की आप कोशिश करोगे, बस लगाना ही नहीं पर उसको जिंदा रखने की भी आप अपनी ओर से बहुत ज्यादा कोशिश करोगे, ओनली देन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अब आप ये सोचोगे कि भाई मैं अकेले से करने में क्या फायदा होगा, मतलब इतना तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, है ना। पर आप ये सोचो कि आपकी तरह हर एक इंसान अगर ऐसे ही सोचे कि हाँ मैं पौधा लगाऊंगा या फिर मैं पौधा लगाऊंगी और उसकी देखभाल भी करूंगी, तो कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं हमारे सवाल पे। तो बच्चों हमने इसका जवाब जाना था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू वाइल किलिंग अ ट्री इज टू एंश्योर दैट द रूट्स आर पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ, अ ट्री इज नॉट किल्ड ऑल ऑफ अ सडन, सो लॉन्ग एज द रूट्स आर इंटैक्ट इनसाइड द अर्थ द ट्री रिमेन्स अलाइव। यानी कि जब तक वो ट्री रूट्स उसके पौधे के उस मिट्टी में गड़े हुए हो तब तक उस प्लांट को मार डालना मुश्किल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाउ डज द ट्री गेट किल्ड इन द एंड, मतलब कि अंत में एक पौधा किस तरह से अपनी मौत मर। तो इसका जवाब ये है कि द ट्री विल गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग एंड देन अल्टीमेटली द ट्री गेट्स किल्ड। यानी कि एक पौधा जो है वो एक प्रोसेस से जाएगा, मतलब कि जब उसको एक्सपोज किया जाएगा धूप में तो उसकी खाल जो है यानी कि उसका स्टेम जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा और वो पेड़ जो है वो डिहाइड्रेट होके मर जाएगा। सो द ट्री गेट्स किल्ड, यानी कि वो पौधा तभी के तभी मर जाता है। सो द ट्री टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट गेट इट सेल्फ किल्ड, बहुत ज्यादा वक्त लेता है एक प्लांट मरने के लिए। ओनली वेन द रूट्स आर एक्सपोज स्क्रैच्ड एंड चोक्ड द प्रोसेस ऑफ डाइंग स्टार्ट, यानी कि जब हम ये एक पौधा जो है वो तभी मरता है जब हम उसके रूट्स एक्सपोज करते हैं, है ना, और तब उसको जब सांस लेने में जब डिफिकल्टी होती है, उसको एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं मिलते यानी कि पानी वगैरह, तब एक प्लांट मर जाता है। और एक आखिरी सवाल है बच्चों, डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ अ स्टोरी, एक्सपांशन स्टोरी ऑफ अ ट्री, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है किस तरह से एक प्लांट बड़ा छोटा होता है, मतलब शुरू में छोटा होता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है और वो प्लांट बड़ा हो जाता है। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, द स्टोरी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपांशन इज ग्रेजुअल एंड मेथोडिकल, द सीड इज सोन इन टू द अर्थ, इट स्प्राउट्स, इट ग्रोज स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, इट फीड्स ऑन इट्स क्रस्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ अब्सॉर्बिंग सनलाइट, एयर एंड वॉटर ऑफ द एटमोस्फियर, इट ग्रोज इन टू अ ट्री, है ना। मतलब कि आपको ये यहाँ पे बताना है कि कैसे एक छोटा सा सीड यानी कि एक छोटी सी जो बीज होता है वो किस प्रकार से बड़ा हो जाता है। यानी कि छोटे छोटा जो बीज होता है आप जब उसको मिट्टी में डालते हो तो उसके स्प्राउट्स आते हैं पहले, तो है ना, यानी कि उस बीज के अंकुर आने लगते हैं। अंकुर आने के बाद वो एक छोटे पौधे में बहुत ही उसकी साइज छोटी होती है, उससे उसका आकार लेती है। उसके बाद एक छोटा एक पौधा बन जाता है और धीरे धीरे वो एसेंशियल एलिमेंट्स जो है अर्थ से अपने लिए फीड, अपने लिए खुद के लिए लेता है, धूप लेता है, हवा लेता है, पानी लेता है, और धीरे धीरे करके बहुत साल होने के बाद फिर एक छोटा पौधा, यानी कि हम कह सकते हैं वो छोटा बीज एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है, एक बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। ओके सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।